दिन भर 14 दिसंबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फतल। सीरिया में एलेप्पो में सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम में फिर दरार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद,
इफ वी लिबरेट एलेप्पो फ्रॉम द टेररिस्ट देयर वुड बी आई मीन द वेस्टर्न ऑफिशियल्स एंड द मेनस्ट्रीम मीडिया देयर गोइंग टू बी वरी अबाउट द सिविलियंस दे आर नॉट वरी When the opposite happens, when the terrorist killing.
जिक्र होगा नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी के नए दावे का, और दुनिया जहान में देखेंगे क्यों नाराज है चीन मंगोलिया से।
चाइना के लिए तीन मामले बहुत जिसको कह सकते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, सबसे पहले तिब्बत, ताइवान और साउथ चाइना सी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो से आ रही खबरों से पता चल रहा है कि एक दिन पहले शुरू हुआ संघर्ष विराम टूट गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों पक्षों ने दोबारा हिंसा शुरू होने पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। आम लोगों और लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए युद्ध विराम पर समझौता हुआ था। हालांकि लोगों को बाहर निकालने वाली बसें खाली पड़ी हैं। सीरियाई सरकार से लड़ रहे हिजबुल्लाह ने कहा है कि 15,000 लोग यहां से जाना चाहते हैं, जिनमें करीब 4,000 लड़ाके भी हैं। दिल्ली में संसद का एक और कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। नोटबंदी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा सदन की कार्यवाही के साथ ही शुरू हो गया। विपक्षी दल चर्चा के अंत में वोटिंग कराने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी बिना मतदान के चर्चा कराना चाहती थी। प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे, लेकिन हंगामा नहीं रुका तो इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर चर्चा टालने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली से जुबैर अहमद।
आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संसद में इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री से संबंधित ऐसी जानकारी है जिससे उनके नोटबंदी के फैसले का गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर वार किया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं, वो संसद में खुद नहीं बोलना चाहते।
दुनिया में हथियारों की निगरानी करने वाले एक संगठन का कहना है कि इस्लामिक स्टेट औद्योगिक स्तर पर हथियार बना रहा है। ये हथियार इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इराक के मूसल इलाके में बनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन की कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च नाम की संस्था का कहना है कि चरमपंथी हजारों की तादाद में हथियार बना रहे हैं। इसके लिए तुर्की से सामान आ रहा है। संस्था ने मूसल की लड़ाई में मिले हथियारों का अध्ययन करने के बाद ये नतीजे निकाले हैं। CAR के निदेशक जेम्स बेवन ने BBC से कहा,
We've had growing evidence for the past 2 years that a lot of the chemical precursors which they're using for example propellants.
हमारे पास इस बात के पिछले 2 साल से सबूत मिल रहे हैं कि जिन घरेलू विस्फोटकों और प्रक्षेपकों को ये लोग बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब तुर्की से आया है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सीधा संपर्क कायम कर लिया है जिसके जरिए दक्षिणी तुर्की से बड़ी संख्या में और कई बार सामान लाए जा रहे हैं। CAR के निदेशक जेम्स बेवन के शब्द। जेम्स बेवन का ये भी कहना था कि हथियार वैसे ही हैं जैसा कि राष्ट्रीय सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने मान लिया है कि उन्होंने नशीली दवाओं के संदिग्ध व्यापारियों की खुद हत्या की है। दुतेर्ते का कहना है कि डावाओ शहर का मेयर रहते हुए उन्होंने इसे अंजाम दिया था। ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस तरह की स्वीकारोक्ति की है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नीदरलैंड्स की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि क्राइमिया की म्यूजियम के सोने के अनमोल भंडार को यूक्रेन को लौटाया जाए, ना कि रूस को। सोने का ये संग्रह एक डच म्यूजियम को प्रदर्शनी के लिए दिया गया था। तब क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद 2014 में रूस ने यूक्रेन के इस प्रायद्वीप को अपने साथ मिला लिया। गिनी के पूर्व खदान मंत्री महमूद थियाम को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया है। महमूद थियाम पर देश के सभी खदानों का नियंत्रण चीन की एक कंपनी को देने का आरोप है। इस काम के लिए उन्हें कथित रूप से चीन के कारोबारी ने रिश्वत दी थी। 6 साल पहले खदान के खास अधिकार देने के बदले थियाम को जो पैसे मिले उसका वो अवैध रूप से दूसरे देश में ले जाने का भी आरोप उन पर लगा है। वेनेजुएला की सरकार ने देश की सबसे बड़ी मुद्रा के बैंक नोट को बंद कर दिया है। उसकी जगह और ज़्यादा बड़ी मुद्रा के नोट लाने की तैयारी है। वेनेजुएला इस वक्त गहरे आर्थिक संकट में है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। सीरिया के एलेप्पो शहर में सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच हुआ युद्ध विराम फिर से चरमराने लगा है। शहर के पूर्वी हिस्से पर काबिज विद्रोहियों को रूसी फौज की मदद से काफी कमजोर कर दिया गया है और सुबह खबरें आई थी कि 4 साल से चल रहा युद्ध अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब फिर से सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। शहर में फंसे आम लोगों और लड़ाई छोड़कर जाना चाह रहे विद्रोहियों को निकलने का मौका देने के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम हुआ था। बीबीसी संवाददाताओं की ताज़ा रिपोर्टें सुनिए राजेश जोशी से।
पूर्वी एलेप्पो में फंसे पत्रकार ज़ोहिर अल-शिमाली ने बीबीसी को फिर से शुरू हुई लड़ाई के बारे में ताज़ा जानकारी दी है।
The last hours, let's say, totally chaos. The terrible attacks have just...
भारी तबाही हो रही है, भयंकर हमले फिर शुरू हो गए हैं, तोपें चल रही हैं और भारी बमबारी भी हो रही है। लोग अब भी सड़कों में हैं क्योंकि हजारों परिवार अब भी यहां फंसे हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि कितने लोग मारे गए हैं।
युद्ध विराम उल्लंघन के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि युद्ध विराम समझौते के तहत सुरक्षित निकलना चाह रहे आम लोगों और विद्रोहियों को लेने के लिए बसें भेजी गई थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने को कोई राजी नहीं हुआ। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन कर रही रूसी फौजों ने एक बार फिर से विद्रोहियों पर भारी बमबारी शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विद्रोहियों ने युद्ध विराम का इस्तेमाल फिर से एकजुट होकर हमला करने के लिए किया, जबकि विद्रोहियों का समर्थन कर रहे मीडिया और कार्यकर्ताओं ने सरकार समर्थक हथियारबंद समूहों को हमले शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा है कि लड़ाई कुछ दिन और जारी रह सकती है।
मुझे उम्मीद है कि विद्रोही अगले 2 या 3 दिन में प्रतिरोध करना बंद कर देंगे, और जो मुट्ठी भर लोग ऐसा करने से इनकार करते हैं ये उनका अपना फैसला होगा।
ये थे रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के शब्द। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी रूसी टीवी चैनल RT को दिए एक इंटरव्यू में पश्चिमी देशों पर दोगलेपन का आरोप लगाया है।
If we liberate Aleppo from the terrorists, there would be, I mean, the Western,
अगर हम एलेप्पो को आतंकवादियों से मुक्त करवाते हैं तब पश्चिमी देशों के अधिकारियों और उनके मीडिया को आम नागरिकों की चिंता सताने लगती है। उन्हें तब चिंता नहीं होती जब इसका उल्टा होता है, जब आतंकवादी उन्हीं आम लोगों का कत्ल करते हैं या पलमायरा पर हमला करके सीरिया ही नहीं बल्कि मानवता की धरोहरों को भी तबाह कर देते हैं, तब कोई परवाह नहीं करता।
ये थे सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के शब्द। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई सरकार का समर्थन कर रही गठबंधन सेनाओं पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया था। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सीरिया में सरकार समर्थक राजनेता फारिस शेहाबी ने BBC से कहा कि सरकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे लोग विद्रोही नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विद्रोही कहा जा रहा है तो फिर अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के लोगों को भी अफगान विद्रोही ही कहना पड़ेगा।
No, people from the eastern parts of Aleppo were executed. Actually, the ones who execute people are the current...
पूर्वी एलेप्पो में किसी आम आदमी को नहीं मारा गया है। दरअसल अलकायदा ऐसा करता है क्योंकि वो बंधक बनाए गए लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सीरिया के दूसरे इलाकों में जाने का मौका पा जाएं।
ये थे सीरियाई राजनेता फारिस शहाबी के शब्द। हालांकि सरकार विरोधी लड़ाके एलेप्पो शहर के एक कोने में समेट दिए गए हैं, लेकिन पिछले 4 बरस से चल रहे भीषण युद्ध में तार तार हो चुके शहर में शांति अब भी आकाश कुसुम साबित हो रही है।
एलेप्पो में युद्ध विराम खतरे में।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
नोटबंदी के मुद्दे पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी जानकारी है जिससे उनके नोटबंदी का गुब्बारा फूट जाएगा। बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मोदी डर रहे हैं इसलिए उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। पूरी जानकारी सुबह रहमत की इस रिपोर्ट में।
नोटबंदी के मामले में 5 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर संसद में उन्हें बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। आज लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद उन्होंने जो दावे किए उससे भूकंप तो नहीं आया, लेकिन उसके झटके जरूर महसूस किए गए। मीडिया के सामने उन्होंने ये दावा किया,
प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं।
पीएम डरे हुए हैं, किस बात से डरे हुए हैं? राहुल गांधी ने इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर वार किया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं।
सदन को रोकने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी है और वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो कुछ भी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, सब बेबुनियाद है।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है।
एक महीने से पूरा ऑपोजिशन, सब पार्टी लोकसभा में चर्चा करनी चाहती है। यहाँ पे हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें।
कौन रोक रहा है उन्हें बोलने से? अनंत कुमार यही पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी संसद में बोलने से खुद ही भाग रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद ही संसद को नहीं चलने दे रहे।
नवंबर 16 तारीख से हर दिन विपक्ष को, कांग्रेस को, तृणमूल को हम कहते रहे, आप नोट बदली के इस बहस में और जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है, उसके बारे में आप चर्चा करो। आप नियमों के चक्कर में पड़ गए, टेक्निकलिटी में पड़ गए और कल तक आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए और आज एकदम खड़े होकर के हमें बोलने नहीं दे जा रहा है इसे कह रहे हैं, ये सरासर गलत है।
इससे पहले आज हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब संसद के मौजूदा सत्र के बचे अगले कुछ दिन भी हंगामे की नजर हो सकते हैं, शायद राहुल गांधी के धमाके वाले बयान की नौबत ही ना आए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बॉलीवुड के गानों में अक्सर हीरो हीरोइन का पीछा करता है, उसे परेशान करता है, जबरदस्ती उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है और हीरोइन बार बार मना करती है लेकिन आखिरकार मान जाती है। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूट्यूब पर भी इस चलन पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो जारी हुआ। क्या बॉलीवुड ऐसा चित्रण अनजाने में करता है या जानते पूछते हुए? बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य और सुशांत मोहन की पड़ताल।
मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली, भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है।
इसी साल रिलीज हुई फिल्म सुल्तान में सलमान खान अनुष्का शर्मा के लिए ये गाना गा रहे हैं। अनुष्का साफ तौर पर इसे पसंद नहीं कर रही, पर जैसा अमूमन हिंदी फिल्मों में होता है, हीरोइन की ना में हाँ समझी जाती है और आखिर में उसे हीरो से प्यार हो ही जाता है।
खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, शोला है फुल छड़ी है।
अब से 26 साल पहले आई फिल्म दिल में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। 1990 में रिलीज हुई इस फिल्म में आमिर खान कॉलेज में माधुरी दीक्षित के बारे में गाना गाते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं, पर आखिर में जबरदस्ती से उस ना को हाँ में बदल दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार याद दिलाते हैं कि यही आम जनता की पसंद है और जब वो फिल्म आई थी लोगों ने उसे बहुत सराहा था।
जब वो आया था लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। अभी आलोचना हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका, अगर मैं तो कमर्शियल फिल्में बनाता हूँ, मैं तो ग्रैंड मस्ती भी बनाता हूँ।
जी हाँ।
तो मेरी एक ऑडियंस है जिसके लिए मैं फिल्म बनाता हूँ, वो फिल्म आके देखती है। आप तो आलोचना करोगे लेकिन एक ऑडियंस है जिसको बहुत पसंद है, उसका मैं क्या करूँ।
तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है।
मैं तेरा हीरो फिल्म का ये गाना पलट कौसर मुनीर ने लिखा है और इसके बोल लिखते वक्त उनके सामने भी ऐसी ही चुनौती थी। कॉलेज में हीरो हीरोइन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गाना गाता है जो हीरोइन को नापसंद है। तो क्या दशकों से बॉलीवुड में औरतों के कंसेंट यानी रजामंदी के चित्रण में कोई बदलाव नहीं आया है?
जब किसी के मर्जी के खिलाफ आप उसको छेड़ रहे हो, सता रहे हो, आपके लिरिक्स, आपका म्यूजिक, आपके एक्टर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, देन इट्स रॉन्ग। क्रिएटिविटी के नाम पे बहुत गलत चीजें हो रही हैं, जो जो यूथ है या जो किसी बीसी सेंटर में वो कट्टे पे बैठा आदमी उसको गाने को यूज करता है गलत तरीके से, क्योंकि वो विजुअल और वो इमेज उसके दिमाग में अटका हुआ है।
बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर जब हमने पाठकों से पूछा तो कई ने ऐसे चित्रण को गलत बताया। एक पाठक अमित चौहान ने लिखा कि ये फिल्मों में इजहार मोहब्बत होगा पर असल जीवन में ईव टीजिंग और हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न है। तो अगर फिल्मों में ऐसे उत्पीड़न को मोहब्बत या हीरोइन को पाने का कारगर रास्ता बताया जाए या हीरोइन की ना को हाँ बताया जाए, फिल्म में ये गाना लिखने वाले गीतकार सबीर के मुताबिक वो अपने हर गाने में औरतों की इज्जत करते हैं और इस गाने में भी हीरो हीरोइन को मना रहा है और उसमें लोगों को आहत करने की कोई मंशा नहीं है।
ये तो सर डायरेक्टर के ऊपर होता है, कोरियोग्राफर के ऊपर होता है। हम लोग तो गाना लिखते हैं और अपने गाने में, और मैं आगे से भी ये कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द ना यूज करूं जिससे माताओं बहनों को और हमारी फैमिली को, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को उसकी तकलीफ ना हो, उनको बुरा ना लगे। तो उनका ध्यान हमेशा से मैं रखते आया हूँ और अच्छा हुआ आपने ये सवाल करके मुझे और वो कर दिया कि मैं आगे से और ध्यान दूँ।
बॉलीवुड चाहे जो सफाई दे, फिल्म आलोचक एना वेटिकार्ड के मुताबिक बॉलीवुड की नजर में लड़कियों के साथ की जाने वाली ऐसी हिंसा क्यूट और मजेदार है। हमारे पाठक अभिषेक पांडे ने भी फेसबुक पर लिखा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि फिल्मों का भी समाज पर असर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एना वेटिकार्ड कहती हैं कि बॉलीवुड में औरतों के साथ जबरदस्ती प्यार करना या उनकी ना में हाँ को दिखाने का चलन गलत है और उसके आलोचना करने वाली आवाजें कम हैं, लेकिन उनका बार बार उठना जरूरी है। मुंबई से सुशांत मोहन के साथ दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। रूस और चीन के बीच बसा छोटा सा देश मंगोलिया इन दिनों चीन के गुस्से की आंच झेल रहा है। दो बड़े देशों के बीच बसे इस छोटे से देश का रणनीतिक महत्व है और चीन नहीं चाहता कि ये मुल्क उसके एहसानों का बोझ उतार फेंके। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के मंगोलिया दौरे से नाराज चीन के निशाने पर भारत भी है, जो जाने अनजाने मंगोलिया का मददगार बनने की फिराक में है। इन सब के बीच सवाल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर चीन तिब्बत के मामले पर इतना संवेदनशील क्यों है। इस हफ्ते दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। तिब्बत के मसले पर दुनिया ने चीन को आए दिन अपना गुस्सा निकालते देखा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन से लेकर भारत भी इस भावनाओं के ज्वार को उफनते हुए देखते आए हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला चीन 75 लाख तिब्बती लोगों को लेकर इतना भावुक हो जाता है कि सामने कोई भी हो उसे इसका खामियाजा उठाने की कम से कम धमकी तो दे ही दी जाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर चीन की टेढ़ी नजर देख चुके हैं। इस बात की कोई आशंका नहीं कि तिब्बत कभी चीन से अलग होने की सोचेगा, तो फिर हर बार तिब्बत को लेकर चीन की तबीयत क्यों उखड़ जाती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल गोविंद द्विवेदी,
चाइना के लिए 3 मामले बहुत जिसको कह सकते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। सबसे पहले तिब्बत, ताइवान और साउथ चाइना सी। अभी तिब्बत एक पेचीदा मामला है क्योंकि तिब्बत कुछ हद तक एक आजाद देश की तरह रह चुके हैं और अभी पूरी दुनिया ने मान लिया कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि उनका एक अलग पहचान है, चाहे वो चीन का हिस्सा भी है और उसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोला जाता है क्योंकि उसका अपना कल्चर है, उसकी अपनी हिस्ट्री है। जो मेन मुद्दा जहाँ चाइना बहुत ही सेंसिटिव है वो है दलाई लामा, क्योंकि वो समझते हैं कि दलाई लामा जो है वो अलग होना चाहते हैं, तो इसलिए जो भी दलाई लामा से किसी रूप में जब उसका कोई इंटरेक्शन होता है तो वो बहुत ही एक इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता है। वैसे ही वो ताइवान के ऊपर भी जब भी ताइवान से जैसे अभी अमेरिका के जो होने वाले राष्ट्रपति हैं उनकी बात हुई ताइवान के प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने इसके बहुत अपना नाराजगी जाहिर की, इसलिए एक ये इमोशनल मामला है।
तिब्बत ताइवान की तरह कारोबार और उद्योग का केंद्र नहीं है, लेकिन वहां के हर आंगन में संस्कृति के फूल खिलते हैं। दुनिया से अलग पहचान रखने वाले तिब्बत को चीन अपनी नाक समझता है और दलाई लामा की 4 दिन तक मेजबानी करके मंगोलिया ने उसे नाराज कर दिया है। इसके नतीजे में चीन ने सीमा पर टैक्स लगाकर मंगोलिया को सामानों की सप्लाई मुश्किल कर दी है। रूस और चीन से घिरा मंगोलिया इस दिक्कत के लिए तैयार नहीं था। जेएनयू के प्रोफेसर शरद के सोनी ने मंगोलिया पर पीएचडी की है और कई बार वहां जा चुके हैं।
89% ऑफ मंगोलियाज एक्सपोर्ट्स एंड ऑलमोस्ट 26% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स दैट इज अकाउंटेड बाय चाइना। तो आप देखिए कितना बड़ा इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाइना के साथ है। बिना चाइना के मंगोलिया कुछ नहीं कर सकता है इकोनॉमिकली अपने यहाँ। और ये जो अभी जो चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है ये इन रिएक्शन टू द विजिट ऑफ दलाई लामा, और ये मंगोलिया को अभी सहना पड़ेगा। ये तो बायलैटरली टॉक करके ही बात को खत्म किया जा सकती है।
मंगोलिया चीन की इस अहमियत को जानता है। दलाई लामा बीते साल भी वहां जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा तय हो जाने से उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस साल अच्छा मौका देखकर जब दलाई लामा मंगोलिया पहुंचे तो वहां उनकी खूब आवभगत हुई। इस देश में बौद्ध लोगों की बहुतायत है और तिब्बती धर्म गुरु उनके लिए पूजनीय है। दलाई लामा की संस्था भी मंगोलिया से ही शुरू हुई थी। सालों पहले जब दलाई लामा चीन से भाग कर आए थे तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में लखन मेहरोत्रा ने उनकी अगवानी की और फिर लंबा समय उनके साथ बिताया। विदेश मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर होने के बाद भी उनका ये संपर्क बना रहा। लखन लाल मेहरोत्रा,
चंगेज खान की जो संतति थी उसमें एक उनके मंगोलिया के एक बड़े प्रतिष्ठित राजा थे अल्ताई खान, उसके बाद में कुबलाई खान आए। तो ये जब दलाई लामा मंगोलिया गए और उनके धर्म को वहाँ की सारी जनता ने स्वीकार कर लिया तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको ये दलाई लामा का शीर्षक देते हैं जिसके माने होते हैं ओशन ऑफ विजडम। तो विजडम को बौद्ध धर्म में प्रज्ञा कहते हैं, संस्कृत में भी प्रज्ञा कहते हैं, तो वो प्रज्ञा सागर का उनको शीर्षक दे दिया और तब से दलाई लामा को प्रज्ञा सागर या दलाई लामा कहा जाता है। और उन्होंने अपनी इस परंपरा को ये आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद ये दलाई लामा की अपनी बौद्धिक स्थिति बन, जहां वो जाते हैं उसी के लिए उनका स्वागत होता है।
बीते साल भारत के प्रधानमंत्री ने मंगोलिया का दौरा कर उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि वो तीसरे पड़ोसी के रूप में उसके साथ खड़ा है। $1 अरब की क्रेडिट लाइन और दर्जनों बड़े समझौतों की सौगात ने मंगोलिया की उम्मीदों को भी हवा दी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। दिक्कत बढ़ी तो उसने भारत की तरफ उम्मीद से देखा और मदद के लिए हाथ भी बढ़ गए, लेकिन भारत ने ये जरूर साफ कर दिया कि वो इस विवाद के बीच में कहीं नहीं आएगा। प्रोफेसर शरद के सोनी,
मंगोलियन की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जो थर्ड नेबर पॉलिसी है उसमें इंडिया एक डिक्लेयर्ड थर्ड नेबर है। जो 2011 में मंगोलिया ने जो फॉरेन पॉलिसी रिवाइज किया उसमें इंडिया का नाम डाल दिया गया कि ये हमारा वन ऑफ द थर्ड नेबर्स है, तो उसको तो लेके चलना है भाई। तो ये चीज तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब हम मंगोलिया से दोस्ती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मदद की अपेक्षा वो रखता ही है। दूसरी बात है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये डिक्लेयर्ड है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप मंगोलिया और इंडिया के बीच, तो इस नाते मंगोलिया जो है सो भरोसा करता है कि इंडिया हमारी मदद करेगा और कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर कोशिश करेगा कि बड़ी कंट्री है तो चलो उससे मदद का गुहार करो। दैट डजंट मीन कि जो आप चाह रहे हैं वही हम करें, लेकिन हाँ ऑफकोर्स करेंगे। चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया का, लेकिन वो दूसरी तरह का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी हम इंटरफेयर करें आता से वो नहीं। मदद करने का मतलब है कि इकोनॉमिकली मदद करें ये कहा जा रहा है, ये नहीं है कि हम चाइना को फटकार लगाएं। तो इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल जो होगा वो मदद करने की सबसे अच्छा चीज है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि $1 बिलियन जो है एज असिस्टेंस दे रहे हैं मंगोलिया को, तो उस पैसे को मंगोलिया अभी यूज कर सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
भारत कुछ करे उससे पहले ही चीन की सरकारी मीडिया मंगोलिया में उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है। कारोबार और कूटनीति से परे अध्यात्म भी एक ऊर्जा है जो भारत, मंगोलिया और तिब्बत को पास लाती है। लखन मेहरोत्रा।
दलाई लामा का जो स्वरूप है वो केवल भौतिक स्वरूप नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप है, और उनकी विश्व में प्रतिष्ठा उस आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर ही हुई है, और उसका दलाई लामा को अपशब्द कहना, उनका अपमान करना, वो उस श्रद्धा के बिल्कुल विपरीत पड़ता। तो अगर वो चीनी लोग ऐसा कहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भारत उन्हीं की भाषा का अनुकरण करे और उन्हीं के विचारों का अनुकरण करे कि वो दलाई लामा के बारे में क्या मानते। हम तो उनकी, वो तो हमारे बड़े प्रतिष्ठित अतिथि हैं भारत में, और इसी रूप में हमने उन्हें शुरू से देखा है, और उनको हमने राजनीतिक रूप से नहीं देखा है, उनको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देखा है। और सारे भारत में ही नहीं है, भारत में तो एक एक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा रखता है, बल्कि विश्व में ही उनका इतना श्रद्धामय स्वरूप सबके सामने आता है कि वो सब उनके सामने झुक जाते हैं, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला कि इतनी विपत्तियों को सहने के बाद भी उनकी आवाज अहिंसा पूर्ण है, और वो अहिंसा से ही तिब्बत की समस्याओं का हल करना चाहते हैं।
दलाई लामा की हर गतिविधि पर चौंकने वाला चीन अध्यात्म और संस्कृति की इस ऊर्जा के महत्व को अब तक नजरअंदाज ही करता आया है। चंगेज खान और कुबलई खान का मंगोलिया अपनी मुसीबतों का कोई न कोई हल तो निकाल ही लेगा, लेकिन चीन की ये घुड़कियां उसके कुछ और देशों से जुड़ने की वजह तो बन ही सकती हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर वैभव दीवान के साथ।
BBC खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। लोधा कमेटी और BCCI के बीच होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज एक बार फिर स्थगित हो गई। कहा जा रहा है कि कल शायद सुनवाई होगी। कल से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। पहला मैच गाबा की पिच पर डे नाइट मैच होगा, जिसे पिंक बॉल यानी गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये सीरीज अहम रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए क्योंकि वो अपनी जमीन पर दक्षिण अफ्रीका से पिछली सीरीज हारा था, और पाकिस्तान के लिए इसलिए क्योंकि 1999 से लेकर अब तक 9 टेस्ट मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले वो सभी हारा है। BBC हिंदी ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाली सीरीज के बारे में बात की वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली से, और उन्होंने कहा,
दोनों टीमें अपना रेपुटेशन के लिए खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, जैसे वो घर पे हारे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ बहुत कम टीमें हैं जो आजकल घर पे हारती हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया का रेपुटेशन खराब हो गया है। पाकिस्तान अपने क्रिकेट को सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसके पास अच्छे प्लेयर आए हैं और वो भी चाहेंगे कि अपना बेस्ट दिखाएं।
ब्रिस्बेन शहर के गाबा ग्राउंड पर खेला जाएगा ये मैच, जहां पिछले 28 सालों में ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारा है। अब क्रिकेट से शतरंज की ओर। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने लंदन शतरंज क्लासिक के चौथे दौर में ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी माइकल एडम्स के खिलाफ ड्रॉ बाजी खेली। BBC खेल समाचारों में अभी इतना ही। मैं वैभव मिलूंगा कल सुबह के रेडियो प्रोग्राम नमस्कार भारत में। धन्यवाद।
और दुबई से खबर आ रही है कि वर्ल्ड सुपर सीरीज मुकाबले के पहले दौर में भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची को हरा दिया है। पहला सेट जापानी खिलाड़ी ने जीता 21-12 से। दूसरे सेट में सिंधु ने वापसी की 21-8 और 21-15 से जीत कर उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया है। नंबर 5 खिलाड़ी हैं अकाने यामागुची दुनिया की, और इस टूर्नामेंट में उन्हें दूसरी वरीयता दी गई है। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो से आ रही खबरों से पता चल रहा है कि एक दिन पहले शुरू हुआ संघर्ष विराम टूट गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। दिल्ली में संसद का एक और कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। नोटबंदी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा सदन की कार्रवाई के साथ ही शुरू हो गया। विपक्षी दल चर्चा के अंत में वोट की मांग पर अड़े रहे, जबकि सत्ताधारी दल BJP बिना मतदान के चर्चा कराना चाहती थी। दुनिया में हथियारों की निगरानी करने वाले एक संगठन का कहना है कि इस्लामिक स्टेट औद्योगिक स्तर पर हथियार बना रहा है। ये हथियार इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इराक के मूसल इलाके में बनाए जा रहे हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान सदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।